आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। रश्मा जी नमस्कार।
हाँ जी नमस्कार, आपको भी आपके श्रोताओं को भी।
रश्मा जी, आपका प्ले मेलबर्न थिएटर कंपनी में हो रहा है, मेलबर्न तालम
जी।
इस प्ले के बारे में कुछ बताइएगा।
मेलबर्न तालम 3 भारतीयों की कहानी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आ रखे हैं और उनमें से एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट वीजा पर आया है, एक वर्क वीजा पर आया है जो हैदराबाद से है, और स्टूडेंट वीजा से जो आया है वो पंजाब गुरदासपुर से एक 19 साल का लड़का है, और तीसरा एक लड़की है सोनाली, जो कि लड़की तो नहीं महिला ही है, 30 साल की भी हुई नहीं होने वाली है, और उससे वो 30 साल का होने का प्रेशर है, वो स्पाउस वीजा
अच्छा।
पर आई थी लेकिन अब उसका तलाक हो गया।
अच्छा।
तो इन 3 अलग अलग किरदारों को लेकर फ्लैग स्टाफ की पृष्ठभूमि पर इस नाटक को की शुरुआत होती है, और हम देखते हैं कि ये तीनों, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब किसी और भारतीय को देखते हैं तो हम एक मिनट के लिए पलट के सोचते हैं कि अच्छा ये कौन है, क्या
जी,
होगा।
बिल्कुल।
तो उस एक हंसी वाले माहौल से शुरू होकर उनकी जिंदगी में जो और परेशानियां कठिनाइयां आ रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें हम फिर जाते हैं और कैसे कुछ ऐसा होता है उनके साथ, उनमें से एक जो कि हैदराबाद से आ रखा है, एक एक्सीडेंट होता है और जिससे बाकियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है वो हम नाटक के जरिए देखते हैं।
यानी ये जो 3 कलाकार हैं, ये जो किरदार हैं नाटक के, इनके माध्यम से हम कई मुद्दों पर नजर डाल सकेंगे।
जी, और आप देखेंगे कि ये अनेक भारतीयों की कहानियां उन्हीं की कहानी से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कुछ सोचकर कुछ आते हैं, एजेंट कहते हैं कि आपका इतने पैसे से गुजारा हो जाएगा और वो नहीं होता है, और कितनी महंगाई है, नौकरी मिलती नहीं है, एक्सेंट की कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम एक तरीके से हम अंग्रेजी बोलते हैं, एक तरीके से ये अंग्रेजी बोलते हैं, उसे समझना और उस तो उन सब कठिनाइयों को से जूझते हुए आपको शायद आइडिया हो कि एक टाइम था 2015 में कुछ भारतीय स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था ऑस्ट्रेलिया में, और वहीं से इस नाटक की शुरुआत हुई थी।
अच्छा जी।
जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो और रिसर्च करी और उससे मुझे आइडिया लगा कि शायद इसके बारे में और लिखा जाए। और एक और जो सच्ची घटना है, एक फ्लैगस्टाफ स्टेशन पे एक भारतीय के साथ एक्सीडेंट हादसा हुआ था, तो इन सब कहानियों को जोड़ते हुए हर भारतीय जो कि यहाँ है, या शायद हर माइग्रेंट, बहुत से माइग्रेंट जो यहाँ आते हैं साउथ एशिया से, उनकी कहानी होगी ये।
जी, तो कोई ना कोई पहलू किसी ना किसी को अंदर तक छू भी जाएगा और उस कहानी के साथ में वो कहीं अपने आप को जोड़ भी पाएंगे और उनकी समस्याओं को शायद हम बेहतर तौर पर समझ भी पाएंगे।
जी, और वो बहुत जरूरी भी है कि
तो
हम उनकी समस्याओं को भी देखें और ये भी देखें कि हम एक समाज की तरह हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्या है जो हम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए भी।
जी, ये एक लंबा नाटक है, यानी फुल लेंथ प्ले है, तो इसका जब प्रोडक्शन हुआ, लिखने में तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत समय लगा, बहुत रिसर्च करनी पड़ी होगी, आखिरकार अब ये स्टेज पर आ गया है, तो यहाँ तक लाने में क्या परेशानियां सामने आई आपको?
देखिए, परेशानियां तो बहुत सी होती हैं, पहली बात तो, क्योंकि नाटक जब इतना विस्तार हो उसका, क्योंकि यहाँ पे हम एक शहर को भी एक किरदार की तरह
लाए हैं,
बनाया गया है। जी हाँ, तो मेलबर्न एक कैरेक्टर बन चुका है इस नाटक में, तो जब इतना बड़े कैनवस पे हम पेंटिंग करते हैं तो आसान नहीं होता है, कहीं खामियां आ जाती हैं, छूट जाते हैं, तो जैसे थिएटर एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, तो उसमें जब डायरेक्टर्स आते हैं, और मेलबर्न थिएटर कंपनी ने शुरू से ही इसमें एक इंटरेस्ट लिया, ये मेरी एक
बहुत बड़ी उपलब्धि है ये।
उपलब्धि मतलब उससे पहले किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने इसी में शुरू से
जी
इंटरेस्ट लिया और
हाँ
अलग अलग जगहों पे इसकी रीडिंग अलग अलग फेस्टिवल्स में उन्होंने
जी
करवाई, तो उससे इसके डेवलपमेंट का रास्ता मिल गया।
हाँ
और उसमें क्या है कि अगर आप अकेले ही अपने कमरे में बैठकर लिख रहे हैं तो मंच के लिए कहानियां नाटक लिखना संभव नहीं होता। तो जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, फेस्टिवल में आप जाते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया होती है, ऑडियंस आपको सराहता है, फिर आप उसमें और आगे काम करते हैं। और फिर
जी
एक्टर्स ने, मेलबर्न थिएटर कंपनी के जो लिटरेरी डायरेक्टर हैं क्रिस मीड, उन्होंने पूरा साथ निभाया और उन्होंने एक दिशा दी इसे। और फाइनली जब मंचन हो रहा है तो जो हमारी डायरेक्टर हैं वो इंडियन नहीं है, वो एक ग्रीक है,
जी
पेट्रा केलाइव, तो वो एक अपना एक रंग लेकर आई है इस नाटक में। और एक्टर्स की तो एक भूमिका रहती ही है ओवर द इयर्स, लेकिन उसमें कठिनाइयां ये आती हैं कि आप एक तरीके से सोचते हैं नाटक को और वो निकल कर कुछ
और
उसमें जो हाँ कुछ और निकल कर आता है,
जी
और वो जरूरी भी है क्योंकि लेखक एक तरह से जो देखता है और एक्टर जिसने उसको निभाना है वो एक तरीके से निभाता है, और फिर ऑडियंस जो देखेगी तभी वो एक पूरा उसका सर्कल कंप्लीट होता है। जब
जी
ये तीनों हिस्से जो हैं जो जुड़े हुए हैं, ऑडियंस, एक्टर्स और टेक्स्ट, जब ये पूरा कंप्लीट होता है सर्कल, तो फिर वो उसमें से क्या निष्कर्ष निकला मालूम चलता है।
रश्मा जी, मेरा ख्याल है कि जो मैं अगला सवाल आपसे पूछने जा रही थी उसकी बहुत कुछ बात आपने जैसे कह दी, क्योंकि मैं पूछने जा रही थी कि जो हमारे प्ले राइट्स हैं जो लिखना चाहते हैं उनके लिए आपकी एडवाइस क्या है। तो मुझे लगता है आपने ये एडवाइस दे दी कि ये एक जुड़ाव वाला एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें एक्टर भी शामिल हैं और जिसमें राइटर तो है ही और साथ में ऑडियंस हैं। तो ये जो फेस्टिवल की रीडिंग्स हैं इस तरह से कमरे में बैठ के लिखने से आपको अपनी राइटिंग को बाहर लाना होगा
जी
ताकि
बिल्कुल
आप लोगों का उसमें इनपुट शामिल कर सकें।
जी, कमरे में नहीं लिखा जा सकता नाटक, नाटक थिएटर में बैठ के लिखा जाता है और
जी
नाटक एक्टर्स के साथ ही जाकर संभव होता है। और मैं ये बोलूंगी कि एक बड़ा एक रिस्क होता है क्योंकि हम लोगों को थोड़े से राइटर्स की एक शाय नेचर होती है, तो एक क्रिटिसिज्म लेने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है
जी
और रिस्क लेने के लिए, क्योंकि एंड मिनट पे चीजें निकल जाती हैं और कहीं नहीं दूसरी चीजें शामिल हो जाती हैं, कुछ
हाँ
आपने लिखा वो मंच पर चलता नहीं है,
हाँ
तो उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए और कुछ नया निकल कर आता है और उसी में, और कोई एक पॉइंट कभी नहीं पहुंचेगा कि आप कहेंगे ये नाटक परफेक्ट हो गया,
बिल्कुल
कभी कोई नाटक परफेक्ट नहीं होता है। हमेशा लगता है कि शायद इसमें हम कुछ और चेंज कर सकते हैं, इसमें हम उसको और अच्छा बना सकते हैं,
जी
तो शर्माना नहीं चाहिए, रिस्क
हाँ
लेने से डरना नहीं चाहिए और नाटक जरूर लिखना चाहिए। बहुत से यंगस्टर्स आजकल सोचते हैं कि सिर्फ हम फीचर फिल्म लिख लें पहले तो, या हम टीवी शोज लिख लें,
हाँ
लेकिन आप अपनी हर सच्चाई टीवी शो या फीचर फिल्म में नहीं कह पाते क्योंकि बहुत कमर्शियल मीडियम है। जो रिस्क आप थिएटर में ले सकते हैं, जो आप नई बात थिएटर में कह सकते हैं, वो आप इन मीडियम्स में नहीं कह सकते, ये
क्या
मेरी
बात
सोच
है
है।
जी,
जी
बहुत बहुत ही कहना चाहिए, बहुत गहरी बात आपने की है, क्योंकि अक्सर टीवी और सिनेमा यानी वो पर्दे पर रचनात्मकता का कहीं पर समझौता हो जाता है जो थिएटर में नहीं होता।
जी जी एक बात आपको बताना चाहती थी जो मेरे कहने में रह गई, कि मेलबर्न तालम VCE के करिकुलम में आ गया है, तो
अच्छा
इसका मतलब कि 11वीं 12वीं कक्षा के जो ड्रामा के स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर विक्टोरिया, वो ये नाटक पढ़ेंगे
क्या
और वो
बात
आके
है
ये नाटक देखेंगे, स्कूल शोज होते हैं, तो इस नाटक का प्रभाव अगली पीढ़ी पर पड़ेगा, हमारी जो समस्याएं हैं वो अगली पीढ़ी शायद ज्यादा समझ सके, और एक इंक्लूजन हो जाता है इस तरीके से, तो
जी
एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है हमारी कम्युनिटी को इंटीग्रेट करने में।
एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलते चलते ये भी बताइए इसके बाद क्या।
इसके बाद मैं एक नए नाटक पर काम कर रही हूँ जिसकी
हाँ हाँ
रीडिंग हैबिटेट सेंटर में हो चुकी है, दिसंबर
अच्छा
में हुई थी।
जी
हैबिटेट सेंटर एक बहुत इम्पोर्टेंट कल्चरल हब है दिल्ली में,
जी
और मैं दिल्ली से ही हूँ,
जी
तो ये प्रहसन है, मैंने ये देखा, और अगर आप भारतीय हैं जो सुन रहे
हाँ
हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ वेस्टर्न मॉडल मत देखिए, सिर्फ वेस्टर्न नाटक मत देखिए, आप अपने पुराने संस्कृत नाटक भी देखिए, वो बहुत गहरे हैं, उसमें बहुत सच्चाई है, और उसमें जो एक एंटरटेनमेंट का है जरिया, या उसमें जो बात कहने का तरीका है वो अलग है। तो मैंने एक प्रहसन लिखा है, पद्मश्री प्रहसन, तो ये एक सेटायर है और वो मल्टीलिंगुअल होगा, उसमें पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी में है, क्योंकि हम एंशियंट संस्कृत ड्रामा जिसे कहा जाता है वो मल्टीलिंगुअल हुआ करता था,
जी
तो उसको मॉडल को फॉलो करते हुए वो लिखने की कोशिश की है कि कैसे हम नाट्यशास्त्र आज भी रेलेवेंट है।
जी रश्मा जी, आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। हम चाहेंगे कि हम आपके और नाटकों का भी आनंद उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना
मैं आपका
चाहूंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, और श्रोताओं का भी हमें सुनने के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।